नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहेमाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, हर जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में एवं संगति में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन नए श्रोता मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम बाइबल के पुस्तक में से नहेमिया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने यह देखा कि नहेमिया ने अलग अलग फाटकों को बनाने में बड़ी बुद्धिमानी से कार्य किया। आज हम देखेंगे कि बाहरी विरोध के प्रति नहेमिया की प्रतिक्रिया। लेकिन इसके पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन के लिए दिया है। आज इस सुंदर समय के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय जब हम आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, उसमें से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। विशेष करके हमारे उन तमाम श्रोता मित्रों के लिए विनती है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशानी हालत में हैं, आप उनकी सुधि लीजिए, ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे भी अपने जीवन में आपके उन उत्तम आशीषों को प्राप्त कर सकें, इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके जीवन में आशीष देना चाहते हैं। हाँ प्रभु, इस समय हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि बुद्धिमानी से नहमिया ने यरूशलेम की शहरपनाह के पुनः निर्माण के लिए कार्य किया। हमने यह भी देखा कि शहरपनाह के अलग अलग भाग अलग अलग मनुष्यों को आवंटित किए गए थे कि पुनः निर्माण का कार्य एक साथ पूरा हो। इस अध्याय में हम देखेंगे कि दीवार का काम आधा हो गया था और बैरियों की ठड्डा उड़ाने की युक्ति विफल रही, तो अब वे एक नई चाल चलते हैं। आइए आप मेरे साथ निकालिए नहमिया की पुस्तक 4:1। नहमिया की पुस्तक 4:1 लिखा है, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। ध्यान दे, ठट्ठों से निर्विघ्न वे कार्य करते रहे तो बैरी ने अन्यों के सामने उनका ठट्ठा करना चाहा। उन्होंने परमेश्वर की बहुमूल्य और संबलत को अस्वीकार्य बात का ठट्ठा किया। हम पढ़ते हैं नहमिया 4:2 में, वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? ध्यान दें, वैरियों के प्रश्न उपयुक्त ही थे। यही प्रश्न इसराइली स्वयं से पूछ रहे थे। उन्हें संदेह था कि कार्य पूरा हो पाएगा या नहीं। ठट्ठा उड़ाना बैरी का हथियार होता है। नहमिया 4:3 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। अम्मोनी तोबिया मजा किया था, उसने व्यंग कसा, लोमड़ी बहुत संभल कर पंजा रखती है, वह अपना चिन्ह भी नहीं छोड़ती, यदि लोमड़ी दीवार पर चले तो किसी भी वस्तु को नहीं छेड़ेगी। तोबिया कह रहा था कि दुर्बल यहूदियों द्वारा बनाई गई शहरपनाह लोमड़ी ही गिरा देगी, क्योंकि शहरपनाह बनाने वाले सुनार, गंदी और स्त्रियां थे। वैरियों ने उनका कैसा ठट्ठा किया, विश्वास कीजिए कि उनकी बातों से वे हताश होने लगे थे, क्योंकि वे कठोर परिश्रम कर रहे थे। अब नहमिया क्या करेगा? उसका एक ही आसरा था, प्रार्थना। आइए हम देखें नहमिया 4:4-5 में, हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू न ढांप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहर पनाह बनाने वाले के सामने क्रोध दिलाया है। ये लोग जो निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाना चाहते थे, वे यहूदियों के और परमेश्वर के बैरी थे। यह प्रार्थना व्यवस्था के आधार पर थी। व्यवस्था में यहूदियों को सिद्ध अधिकार प्राप्त था कि वे अपने बैरियों के लिए दंड मांगे। वे दंड की याचना करने में गलत नहीं थे, परमेश्वर ऐसा करना चाहता भी था। मित्रों, यह बदला नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए इसमें परिवर्तन कर दिया है। आज हमें बदला लेने के लिए मना किया गया है। इफिसियों की पत्री 4:32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मनुष्य में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में पौलुस लिखता है, हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें परमेश्वर को सौंप देना चाहिए, वही बदला लेगा। यदि हम बदला लेते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम विश्वास में दुर्बल हैं। मेरे विचार में कुछ बातें हमें स्वयं संभालनी होती है। धर्मशास्त्र में स्पष्ट है कि ऐसा समय भी आता है जब हमें झिड़की भी देना पड़ता है। हम देखते हैं कि पौलुस ने कुरिन्त के विश्वासियों से कहा कि वे अपनी कलीसिया में अनर्थ बातों का स्वयं ही निवारण करें। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4:2 में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय प्रचार कर, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। जी हाँ, उलाहना देने का मूल अर्थ है पाप का बोध करवाना। डांटने का अर्थ है धमकी देना और समझाना। धमकी देना और समझा का अर्थ है ढाड़स बंधाना। परमेश्वर की संतान को प्रभु की तलवार अर्थात वचन काम में लेना है। हमारे जीवन में भ्रष्ट एवं अनुचित बातों को तलवार से नष्ट करना है। टूटे हुए दिल पर मरहम भी लगाना है। समय आने पर डांटना भी आवश्यक है। परमेश्वर दया करे यदि प्रचारक इस संदर्भ में निष्ठान निभाए। आज के युग में मनुष्य कर्म लुभावन शब्द बोलने वाले शिक्षकों को ग्रहण करता है। उन्हें सुंदर मनोहर शब्दों का प्रचार भाता है जिसका कोई लाभ नहीं। जी हाँ, उन्हें उदासीनता और पाप का मर्मभेदी प्रचार अच्छा नहीं लगता है। यही कारण है कि अनेक कलीसियाओं में, बाइबल आधारित कलीसियाओं में भी देने के लिए मधुर वचनों की अपेक्षा और कुछ नहीं है। यह सच है कि धर्मशास्त्र मधुर है, परंतु कहीं कहीं वह कड़वा भी है। अनेकों का यह मानना है कि धर्मशास्त्र की कड़वी बातें सुनना नहीं चाहिए। लोग चाहते हैं कि उनकी पसंद की बातें, उनकी दिल की बातें, उनके चाहने वाली बातें कही जाए। वे कड़वी बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। मित्रों, व्यवस्था के अधीन यहूदी वैरी को दंड देने की प्रार्थना कर सकते थे। हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर के वैरी उसके लोगों के वैरी होते हैं। तथापि परमेश्वर के जनों का जीवन केवल प्रार्थना करना ही नहीं, वह आचरण एवं युद्ध भी है। इन लोगों ने क्या किया, आइए देखें। नहमिया 4:6 में, हम लोगों ने शहर पनाह को बनाया और सारी शहर पनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। जी हाँ, नहमिया ने वैरी के ठट्ठों को अनदेखा किया और परमेश्वर से प्रार्थना की तथा निर्माण कार्य जारी रखा। इस प्रकार वे विरोधियों के उपहास पर जयवंत हुए। हम नहमिया 4:7 में पढ़ते हैं, जब संबलत और तोबियाह और अरबियो, अमोनियो और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहर पनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना। जब वैरियों ने देखा कि उनका ठट्ठा और उपहास शहर पनाह के निर्माण में बाधा नहीं डाल पा रहा है, तब उन्होंने क्रोधित होकर दूसरी युक्ति निकाली। आइए हम देखें नहमिया 4:8-9 में, और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। देखिए, यहाँ फिर हम देखते हैं कि नहमिया का एकमात्र आसरा प्रार्थना ही है। अब उसका एक ही उद्देश्य है, प्रार्थना करना और देखना। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। धार्मिक शब्दावलियों का उपयोग अच्छा है, परंतु तब जब हम उसके बाद कुछ करें। जी हाँ, मैं ऐसे अनेक जनों को जानता हूँ जो कहते हैं, हम इस विषय में प्रार्थना करेंगे, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रार्थना करने के बाद आप क्या करेंगे। जब मैं एक साधारण प्रचारक के रूप में कार्य कर रहा था, तब मैंने एक मनुष्य से कुछ करने को कहा, तो उसने उत्तर दिया, मैं इस विषय में प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा, एक मिनट, यदि आप इस बहाने नहीं कहना चाहते हैं तो सीधा सीधा मेरे मुंह पर आप मना कर दें, मैं किसी और को खोज लूंगा। मेरे विचार में तो आपको इस विषय में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप करेंगे या नहीं करेंगे। सच तो यह था कि वह करना नहीं चाहता था, वह मुझे टाल रहा था। मैंने किसी और को उस काम के लिए ढूंढ लिया। आज अनेक जन धार्मिक शब्दावलियों का दुरुपयोग करते हैं। जी हाँ, नहमिया भी धार्मिक शब्दावली काम में ले सकता था। हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, हम शांत बैठ करके देखेंगे, यह बचने का बड़ा आसान तरीका है। अधिकांश विश्वासी आज ऐसा ही करते हैं। वे कहते तो हैं कि वे प्रभु पर भरोसा रखते हैं, परंतु वे इस संबंध में कर क्या रहे हैं? यदि आप वास्तव में प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो कुछ न कुछ तो अवश्य करेंगे। नहमिया जानता था कि वैरी उसके विरुद्ध खड़े होंगे, इसलिए उसने पहरुए खड़े किए। परमेश्वर उससे यही आशा करता था। जी हाँ, सहायता केवल बाहर ही से नहीं थी, भीतर से भी थी। नहमिया 4 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकती। ध्यान दीजिए, इस समय उन्हें अति सावधान रहना था। शैतान भीतरी वार से सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध शैतान का सबसे सफल हथियार निराशा उत्पन्न करना है। जी हाँ, मुझे कुछ समय पूर्व दक्षिण भारत के कुछ जंगलों में सेवा कर रहे कुछ दंपति का पत्र मिला, जो अपनी सेवा के पहले सत्र में ही अत्यधिक निराश हो गए थे। उनके पत्र को पढ़कर ऐसा प्रतीत हुआ कि वे घर लौट आना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, आप नहीं जानते, रात में आपका रेडियो कार्यक्रम सुनना हमारे लिए इस प्रदेश में जहां हम रहते हैं वहां के लोगों की भाषा भी हम नहीं समझ पाते, कैसा महत्व रखता है कि हम आपके वचन को सुने। उनके विरुद्ध शैतान निराशा का हथियार काम में ले रहा था। हम तो स्वयं ही निराश थे और वह कार्यक्रम बंद करना चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें संभाला और हमने अपना कार्यक्रम जारी रखा। हम अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि हम जानते थे कि इस युवा दंपति के लिए बाइबल शिक्षा बड़े प्रोत्साहन का कारण है। ओह मेरे मित्रों, परमेश्वर हम पर कैसा दयावान है। शैतान हम सबों को निराशा के हथियार से मारता है। आइए हम देखें नहमिया 4 अध्याय उसके 11 और 12 पद को। लिखा है, हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद न करें, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। ध्यान दीजिए, बैरी ने यहूदियों की निराशा का पूरा लाभ उठाया और अनापेक्षित आक्रमण की तैयारी की। हम उन्हें तब पकड़ेंगे जब वे हमारी ओर से निश्चिंत हो। ऐसे आकस्मिक आक्रमण के समय नहमिया की रणनीति क्या होगी? नहमिया 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है, इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। नहमिया ने प्रत्येक पुरुष को ऐसी स्थिति में रखा था कि वह अपने परिवार की रक्षा कर पाए, जिसके कारण वह काम करते समय परेशान न रहे, अन्यथा अपने घर से दूर वे अपने घर की सुरक्षा से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ काम करते। अतः नहमिया ने उन्हें अपने परिवार के स्थान पर ही काम दिया और हथियार बंद किया। नहमिया 4 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। जी हाँ, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके, यही उनका लक्ष्य था, उनकी पुकार थी। प्रथम विश्वयुद्ध का नायक नेपोलियन अपनी सेना को किसी न किसी ऐतिहासिक घटना का स्मरण करवाकर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करता था। जब पौलुस ने युवा प्रचारक तिमोथियस को अपना मरण गीत सुनाया तो वह एक साहस बंधाने की पुकार थी। दूसरा तीमोथियुस 2:8 का उचित अनुवाद इस प्रकार है, मसीह यीशु को स्मरण रख। यही आज विश्वासियों का नारा है। जी हाँ, नहमिया के युग में यहूदियों का नारा था प्रभु को स्मरण करके। हम नहमिया 4:15 में पढ़ते हैं, जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। अब यहूदी फिर से काम कर सकते थे, बैरी लौट गए थे। उन्होंने देखा कि वे यहूदियों को धोखे से नहीं मार सकते थे। नहमिया अति बुद्धिमान था, उसके पास और भी एक रणनीति है। काश वह आज होता, मुझे वह बहुत अच्छा लगता है। नहमिया 4:16-17 में लिखा है, उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, प्रत्येक कर्मी के एक हाथ में कन्नी और दूसरे हाथ में तलवार थी कि अपनी रक्षा कर पाए। आज विश्वासियों के हाथों में भी ये दो साधन होने चाहिए। कभी हाथ में रखने का अर्थ है कि विश्वासी महापवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करे, यह भीतरी पक्ष है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं जो कहते हैं कि उद्धार पाते ही विश्वासी को गवाही देना आरंभ कर देना चाहिए। मेरे विचार में नव विश्वासियों को तत्काल ही सेवा में नहीं रखना चाहिए, उन्हें सबसे पहले व्यक्तिगत अनुभव से सीखना है कि यीशु उद्धार करता है, रक्षा करता है और संतोष प्रदान करता है। यह सुनना कि किसी ने कल या पिछले सप्ताह उद्धार पाया है परंतु हम उससे 1 या 2 वर्ष बाद सुने कि उसने विश्वास में उन्नति की है या नहीं, हमें उन्नति करना है। हमारे साथ या हमारे हाथ में कन्नी होना है और दूसरे हाथ में आत्मा की तलवार भी होना है। यह भी महत्वपूर्ण है, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा हम अपनी रक्षा करते हैं। हमें एक हाथ में कन्नी और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ना है। मेरे मित्रों, आप इसे गलत न समझें, यहाँ पर तलवार परमेश्वर के वचन को कहा जा रहा है। वर्षों पूर्व स्पर्जन एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था द स्वॉर्ड एंड द ट्रोयल, तलवार और कन्नी। परमेश्वर का कैसा महान जन जो एक हाथ में कन्नी और एक हाथ में तलवार के समर्थकों का उदाहरण था। नहमिया 4:18-20 में लिखा है, राजमिस्त्री अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे, नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहर पनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। नहमिया ने कहा, मैं चौकसी करूंगा, जब तुम तुरही का शब्द सुनो तो वहां एकत्र हो जाना, हम वैरी पर सीधा वार करेंगे, अर्थात हम वैरी का सीधा सामना करेंगे। नहमिया 4:21 में लिखा है, यूं हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पाव फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। मैं नहीं जानता कि वे किसी मजदूर संघ के सदस्य थे, परंतु उन्होंने 8 घंटों से अधिक काम किया। वे सूर्योदय से आरंभ करके आकाश के सितारों के दिखने तक काम करते थे। मेरा विश्वास करें, प्रभु के काम में वे थक कर चूर हो जाते थे। नहमिया 4:22 में लिखा है, फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। दूर के स्थान यरीहो आदि से आने वालों से नहमिया ने कहा, पास में ही रहना, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम लोग रात में चौकसी करो। नहमिया 4:23 में लिखा है, इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरवे जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे, सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। जी हाँ, मैं अभी नहमिया से कहने ही वाला था, तू काम करते करते गंदा तो हो ही गया होगा, परंतु नहमिया कहता है हम स्नान करते समय अपने वस्त्र धोते थे। देखिए, बाइबल में हंसी की बात भी है, ऐसे तनावयुक्त समय में भी परमेश्वर ने विनोद की बात डाल दी, नहीं तो वे कपड़े बदलते ही नहीं थे। दिन हो या रात, वे सदैव सतर्क रहते थे। काश आज भी परमेश्वर के हथियारों से लैस रहा जाए। अभी उन पर परीक्षा का समय आएगा, अनर्थ की उत्पत्ति होगी, जिसके कारण नहमिया क्रोधित होगा और काम भी रुकेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम नहमिया के जीवन में उन अद्भुत बातों को देखते हैं जिसके द्वारा से उसने अपने कार्य को, जो परमेश्वर के लिए उसे करना था, उसने किया। शत्रुओं के मध्य में रहते हुए भी हथियार के साथ अपने लोगों को उसने तैयार किया। आज मैं और आप परमेश्वर के कार्य को किस रूप में करते हैं? क्या मेरा और आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर की निकटता में है? क्या आज हम परमेश्वर के उस वचन रूपी तलवार को लेकर के चलते हैं? क्या हम उस वचन पर विश्वास करते हैं या सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए रखते हैं? मित्रों, आज हम निर्णय लें और परमेश्वर से कहें कि वह हमारी सहायता करे, ताकि हम उसके वचन को अपने जीवन में उतार सकें। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम और भी आगे की बातों को देखेंगे। तब तक आप परमेश्वर की निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा। सारी खताएं